مين دلوقتي؟ الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. तो पिछली क्लास से जो क्विज होता है मन, तो उस क्विज का पहला सवाल ये है कि हमारा दीन पूरा का पूरा किस चीज का नाम है। हमारा दीन पूरा का पूरा किस चीज का नाम है भाई? और भी तो बच्चे कुछ सोचा करें, जवाब ले करें। आप अकायद का नाम है, हुकूक का नाम है, ठीक है? आप क्या बता रहे हो? इसका अहकामाते इलाही का नाम है, ठीक है? हमारा दीन पूरा का पूरा अहकामाते इलाही का नाम है। और अहकामाते इलाही है क्या? ये सारे के सारे जो है वो हुकूक है, ठीक है? ठीक है, अहकामात इलाही अवामिर और नवाही तो है, ये तो पुरानी बात हो गई, हमने कर ली पिछली क्लास के अंदर। हमने आपको क्या अपेरेंटली नई बात बताई? वैसे तो कोई नई बात नहीं है, तो असल तो यही है, लेकिन हमारी बातों में ये नई बात है, ठीक है? वो ये है कि अहकामात इलाही सारे के सारे जो है ना वो हुकूक है, सारे के सारे हुकूक है। तो हमारा दीन बेसिकली हमें क्या कहता है? हुकूक अदा करो, ठीक है? बस इसके अलावा और कुछ नहीं कहता। हुकूक अदा करो, दूसरों के हुकूक अदा करो। तो हुकूक अदा करना ये इतनी अच्छी बात है कि इससे मुसलमान तो मुसलमान, नेक आदमी तो नेक आदमी, कोई बुरा आदमी भी इसका इनकार नहीं कर सकता कि हुकूक अदा करना जो है वो अच्छी चीज है, ठीक है ना? कोई बुरे से बुरा आदमी इसे इनकार नहीं कर सकता कि हुकूक अदा करना तो बड़ी जबरदस्त बात है भाई। वी शुड बी वरिंग अबाउट अदर पीपल्स राइट्स, है ना? हमें दूसरों के हुकूक अदा करने चाहिए। तो अब इसमें सबसे पहला हक हमारे ऊपर किसका आता है? सबसे पहला हक सबको पता होना चाहिए, हमें अल्लाह, ठीक है? सबसे पहला हक हमारे ऊपर अल्लाह का आता है, क्योंकि अल्लाह ने हमें बनाया, ठीक है? और अल्लाह ने ही हमें सब कुछ दिया, जो कुछ भी हमारे पास है सब अल्लाह ताला का दिया हुआ है, ठीक है? अब ये बात जो है कि सब अल्लाह ताला का दिया हुआ है, तो ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि सिर्फ मुसलमानों को ही बात पता है, बात तो सबको पता है, ठीक है? हत्ता के हकीकत तो ये है कि जो एथियस्ट होते हैं ना, उनको भी ये बात पता है कि अल्लाह है, अल्लाह ने सब कुछ बनाया है, ठीक है? अच्छा, बहरहाल तो अल्लाह का हक जो है वो सबसे पहले, ठीक है? अब उसके ऊपर से ना दूसरा हक फिर किसका आता है हमारे ऊपर? ठीक, कौन छोटी सुनी इधर हो जाए ना थोड़ा सा, कि अंकल तो बहुत बड़े हैं आपसे, वो तो आपके पीछे छुपेंगे ठीक। इसका आता नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आता, ठीक है? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हक जो है वो ऑनलाइन भी लोगों ने सही जवाब दिया, सबसे पहले अल्लाह, फिर उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हक आता है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुकूक तो माशाल्लाह लोगों ने किताबें लिखी हुई है पूरी उनके ऊपर, ठीक है? हुकूक हमारे दोस्त मौलाना साहब होते हैं, मौलाना मुनीर रजवी साहब, शुभाने खत्म नबूवत वाली, माशाल्लाह उन्होंने एक बड़ी जबरदस्त किताब रखी है, हुकूक ए मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बड़ी जबरदस्त, लोग बड़ी अंदर मंगवाएंगे, लेकिन अभी तक पहुंची नहीं है। तो अच्छा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुकूक में से सबसे बड़ा हक हमारे पास, हमारे ऊपर क्या है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुकूक में से सबसे बड़ा हक हमारे ऊपर क्या है? सबसे बड़ा हक हमारे ऊपर आप बता
दें।
दुरूद शरीफ पढ़ना है सबसे बड़ा अपने सबसे बड़ा रखते हैं।
दूर से नजर नहीं आती। अल्लाह रसूल ने सबके हुकूम लिख दिए, अल्लाह रसूल सहाबा उलमा मशायख माँ बाप रिश्तेदार पड़ोसी उनके लिए उनकी लाई हुई तालीमात पर अमल कर। ठीक है, तो दूसरा क्या है सबसे बड़ा आपका दर्शन? दीन पर अमल करना। नहीं, ये सबसे बड़ा आपने ठीक है, नबी अलैहिस्सलाम पर ईमान लाना, ईमान लाना नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर। ठीक है, ये नबी अलैहिस्सलाम के हम हमारे ऊपर सबसे बड़ा हक है, सबसे बड़ा। ठीक है, अच्छा अब जो है ना वो ट्रिक क्वेश्चन है। सही है, ये तो ट्रिक क्वेश्चन नहीं थे, तो बड़े कॉमन सेंस बिल्कुल बदीही अपेरेंट क्वेश्चंस। ठीक है, तो अब ट्रिक क्वेश्चन ये है कि नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर ईमान लाना इसका क्या मतलब है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस डिस्कशन अबाउट हुकूक। ये जो हम हुकूक की बात कर रहे हैं ना अभी, इसको यूज करते हुए बताएं कि नबी अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने का क्या मतलब है। ट्रिक क्वेश्चन ही कह सकता हूँ उसको। जी सर, हुकूक की बात करते हुए बताएं,
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अगर हमारे ऊपर ये हक है कि हम ईमान ला पाए तो हम उन पर ईमान लाए, अगर हम उन पर ईमान नहीं लाएंगे तो उनके क्या हक होंगे हमारे?
उन पर ईमान लाना हमारे ऊपर उनका सबसे बड़ा हक है। ठीक है, तो हम जब ईमान लाते हैं क्या मतलब होता है, हम क्या कहते हैं जब ईमान लाते हैं सलाम के ऊपर, तो हम क्या कहते हैं? नबी सलाम का अल्लाह का आखिरी नबी मानना नहीं है, नबी सलाम का सबसे बड़ा हक नहीं, हुकूक में से एक हक है नबी सलाम को आखिरी नबी मानना। सबसे बड़ा हक तो एक है नबी सलाम का अल्लाह का नबी मानना। अब ये हुकूक की डिस्कशन में सबसे पहले क्या चीज थी? अल्लाह का हक है हमारे हमारे पास सबसे पहले किसका हक है? अल्लाह का हक। ठीक है, अब ये अल्लाह जो है वो क्या सिर्फ मुसलमानों का अल्लाह है? ये अल्लाह जो है वो क्या सिर्फ यानी ईमान वालों का अल्लाह है? ये क्या ईसाइयों का अल्लाह नहीं है? अल्लाह जो है वो क्या हिंदुओं का अल्लाह नहीं है? अल्लाह ताला क्या क्रिश्चियंस ज्यूस मार्जिन्स और जितने भी हैं क्या उनका अल्लाह ताला नहीं है? वो कहेंगे भी हमारा भी अल्लाह है, हम भी अल्लाह को मानते हैं। और वो कहते हैं, क्रिश्चियंस भी कहते हैं कि हम अल्लाह को मानते हैं, ज्यूज भी कहते हैं अल्लाह को मानते हैं, हिंदू भी कहते हैं कि हम अल्लाह को मानते हैं। ठीक है ना, बस लफ्ज वो डिफरेंट इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अल्लाह को हिंदू भी मानते हैं। अबू जहल भी कहता है मैं अल्लाह को मानता हूँ कहता था, अबू लहब भी कहता था कि मैं अल्लाह को मानता हूँ। ठीक है, तो फिर आप कौन सी नई बात कर रहे हैं? अल्लाह को मान दूंगा, आप ही मानते हैं अल्लाह को। तो नबी अलैहिस्सलाम के हमारे ऊपर क्या हक है? नबी अलैहिस्सलाम का हक जो है वो क्या है कि उनके बताए हुए रास्ते पे ईमान लाने का मतलब, ईमान लाने का मतलब है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सिखाया है उस रास्ते पर चलना और उनके लिए। अच्छा, तो एक क्रिश्चियन कहता है कि हाँ भाई ये तुम कौन सी नई बात कर रहे हो, मैं भी मेरा भी अल्लाह है। यहूदी कहता है मेरा भी अल्लाह है, तो मैं भी कहता हूँ अल्लाह ने मुझे बनाया है, अल्लाह ताला मुझे भी खिलाते हैं, खाली तुम्हें कोई थोड़ी चलाते हैं, मैं भी अल्लाह का हक अदा करता हूँ। आप अल्लाह की मानते हैं? आपको अल्लाह ने कहा कि ये करो ये करो ये करो, अहमद भाई जवाब दो, आपको भी अल्लाह ताला ने कहा कि अहमद ये करो? भाई क्रिश्चियन कहते हैं मैं भी अल्लाह को मानता हूँ, मैं भी अल्लाह का हक अदा करता हूँ, यहूदी कहते हैं मैं भी अल्लाह का हक अदा करता हूँ। ठीक है,
तो नबी अलैहिस्सलाम कहाँ से आएंगे? जी नबी अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने का मतलब क्या है? नबी अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने का मतलब ये है कि इस बात को मानना कि अल्लाह ताला के हुकूक हैं क्या, अल्लाह ताला का हमारे ऊपर क्या हक है, ये कौन हमें बताएगा? हम किसकी बात मान करके अल्लाह ताला के हुकूक अदा करेंगे? किसकी बात मान करके अल्लाह ताला के भाई ये अल्लाह ताला का हक है, ये जैसा आपके तौर पर आप कहते हैं भाई नमाज पढ़ना अल्लाह का हक है, 5 वक्त दिन में नमाज पढ़ना ये अल्लाह ताला का हक है, कहते हैं ना, ठीक है ना? ईसाई कहते हैं नहीं मैं तो नहीं मानता इस बात कि 5 वक्त नमाज पढ़ना, मैं तो ये नमाज पढ़ते ही नहीं हूँ। यू कहता है मैं तो दिन में 2 वक्त नमाज पढ़ता हूँ, फजर के वक्त में और इशा के और मगरिब के वक्त में, ठीक है ना? तो मैं तो मानते ही नहीं हूँ इस बात को कि अल्लाह का हक है 5 नमाजें पढ़ने, मैं कहता हूँ अल्लाह का हक है वो 2 नमाजें। ईसाई कहता है कि अल्लाह का हक है ना यह अल्लाह तारा का हक जो है ना वो है कि चर्च के अंदर चले जाना और चर्च के अंदर जाकर के ऐसे करके गुड नाइट टेक करके बैठ जाना और फिर जो है वो अल्लाह ताला से प्रे करना, ये अल्लाह तारा का हक है, ठीक है? तो मुसलमान कौन सी बात करता है? मुसलमान क्या कहता है?
आप
एग्जैक्टली मुसलमान में और ईसाई में क्या फर्क है? मुसलमान ईसाई में और यहूदी में और हिंदू में क्या फर्क है? बिल्कुल साहब, आप अभी कराची जा रहे हैं ना, यू बेटर नो दीज थिंग्स, यू हैव टू गो एंड सेल दीज थिंग्स टू योर फ्रेंड्स एंड कॉलीग्स इन कराची एंड फैमिली इन कराची। ये मैं आपसे बात करने वाला हूँ, ठीक है ना? फ्री में नहीं, आप यहाँ पे तफरी करने के लिए नहीं आए, सही है? प्याज की आवाज खा करके आप वापस चले जाएंगे, उसके बाद वहाँ पे जाकर फिर से लग जाएंगे कंप्यूटर साइंस पढ़ जाएंगे। जी नहीं, अल्लाह ताला ने आपको रियाज इसलिए नहीं बुलाया, ठीक है? तो मुसलमान में और यहूदी में और ईसाई में सब में यही फर्क है कि हम कहते हैं कि नहीं, मैं अपनी अकल से नहीं सोचूंगा, मुझे जो लगता है कि अल्लाह का हक ये है, मेरा ख्याल है कि अल्लाह का हक ये है, तो मैं वो हक अदा करना शुरू हो जाऊंगा। नहीं, मैं अपनी अकल की बात नहीं मानूंगा, मैं किसकी बात मानूंगा? मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानूंगा, वो मुझे जो बताएंगे मैं उसके ऊपर अमल करूं, ठीक है? मोहम्मद अली क्या क्या मतलब है इसका? अल्लाह का हक कौन सा होगा मेरे ऊपर? जो मेरी अकल कहेगी, मेरे अब्बू कहेंगे कि ये अल्लाह का हक है, मेरी अम्मी कहेंगे कि ये अल्लाह का हक है, ठीक है? नहीं, मेरी अम्मी कहेंगे ये अल्लाह का हक है। अगर वो वही बात होगी जो कि नबी अलैहिस्सलाम ने बताई है, तब तो मैं अम्मी की बात मानूंगा। अदरवाइज मेरी अम्मी कहेंगे ये अल्लाह का हक है बेटा, ऐसे करो अल्लाह का हक अदा, और वो हक जो है वो नबी अलैहिस्सलाम के बताए हुए तरीके के मुताबिक नहीं होगा, मैं कहता हूँ अम्मी नहीं, अम्मी नहीं, मैं तो वो अल्लाह का हक अदा करूंगा जो नबी अलैहिस्सलाम ने बताया, not what my mother tells me, not what my father tells me, not what my teacher tells me, not what anybody else tells me, मैं वो अल्लाह का हक नहीं मानूंगा, मैं तो सिर्फ उसको अल्लाह का हक मानूंगा जो कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने बताया। ये है नबी अलैहिस्सलाम पर ईमान का, ये है नबी अलैहिस्सलाम पर ईमान का, ठीक है? और नबी अलैहिस्सलाम का हमारे ऊपर सबसे बड़ा हक यही है कि अल्लाह के हुकूक वो मानना जो नबी अलैहिस्सलाम ने हमें बताए, ठीक है? अब बाद में जो है वो सहाबा कराम का हक जो है वो ये आ जाता है कि नबी अलैहिस्सलाम ने जो हमें बताया है तो वो हम तक पहुंचा कैसे, वो सहाबा कराम के वास्ते तक पहुंचा, सहाबा कराम ने बताया कि नबी अलैहिस्सलाम ने बताया, ठीक है? तो इस तरह से सहाबा कराम भी पिक्चर के अंदर आ जाते हैं, और फिर उसके बाद हमारे उलमाए कराम भी इस पिक्चर के अंदर कहाँ आ जाते हैं कि उलमाए कराम ने बताया कि सहाबा कराम ने बताया कि नबी अलैहिस्सलाम ने बताया, ठीक है ना? यहाँ पे उलमाए कराम भी आ गए, ठीक है? तो इन सबके हुकूक इस तरह से हमारे करें तो हमने तो ये तो बात हो गई। अच्छा, दूसरी बात ये कि हमने बिल्कुल आखिर में क्या बात करी थी पिछली क्लास के बिल्कुल आखिर में, एक बहुत बड़ा मसला बताया था, तो वो मसला जो है वो क्या था और क्यों है वो सबसे बड़ा मसला, जो कि सहाबा के दुश्मन صحابہ کے خلاف استعمال کرتے ہیں. شیطان ہمیں یہ سوچ نہیں ہونے دیتا. جی آخر میں کیا بات ہوئی تھی ابھی پچھلی کلاس میں؟ سبھی سے اچھا کی ہاں وہ تو بھول نہیں کہتے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی باڈی جو ہے وہ حجرہ مبارک کے اندر پڑی ہوئی تھی اور صحابہ وہاں سے چلے گئے تھے اور خلافت کے اوپر ڈسکشن شروع ہو گئی تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خلیفہ کون ہے. ٹھیک ہے تو اس کی وجہ بھی آپ لوگوں کو بتا دی تھی. وہ وجہ کیا تھی؟ تکرار. اب علم و یزید بالتکرار ورنہ آگے دوڑ تے پیچھے چوڑ. یہ کیا فرماتے ہیں؟ آگے دوڑ تے پیچھے چوڑ, یعنی جو پیچھے پڑا تھا وہ سب غائب ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے تو ایسا تکرار جب تک نہیں ہوتی تو اس پر پچھا دیا جاتا. جی سلطنت کو سنبھالنا جو ہے وہ سب سے اہم کام تھا اس وقت. ٹھیک ہے سلطنت کو سنبھالنا سب سے اہم کام تھا. تو اس لیے تو بڑی بری بات رکھیے گا یہاں بھی سلطنت کو سنبھالنا. سمجھائیں نا پھر اس کو کہ یہ کیوں سب سے اہم کام تھا. اس کی سب سے بڑی دلیل جی یوسف علیہ السلام نے بھی ایسے ہی کیا تھا. تو یوسف علیہ السلام کے عمل سے بھی اس کی دلیل ملتی ہے کہ انہوں نے بھی اپنے ابو حضور کے پاس بھاگے بھاگے نہیں چلے گئے تھے بلکہ سلطنت کے جو کام ان کے پاس تھا اس کو نبھاتے رہے تھے کیونکہ وہ سب سے اہم تھا اس وقت. ٹھیک ہے ابو کو تو وہ بلایا بھی جا سکتا تھا. ابو کا کام جو ہے وہ بعد میں بھی ہو سکتا تھا. ان کو دوسرے بھائی بھی جو تھے نا وہ بھائی جا کر کے لے کر کے آ سکتے تھے ابو کو. ٹھیک ہے تو اگر کوئی آلٹرنیٹو نہ ہوتا تو پھر یوسف علیہ السلام کو جانا پڑتا. ٹھیک ہے نا اگر کوئی ابو کو لانے والا نہ ہوتا تو پھر جانا پڑتا. لیکن یہاں پہ تو آلٹرنیٹو تھے نا. ٹھیک ہے کہ دوسرے لوگ بھی جا کر کے وہ بھی بیٹے ہی ہیں نا بھائی. خالی یوسف علیہ السلام اکیلے بیٹے ہوئے تو نہیں ابو کے تو دوسرے بیٹوں کو کہہ دیا کہ آپ جا کر کے ان کو دے آئے. لیکن اس کے علاوہ اور کیا اس لیے کہ جس کا شیخ نہیں اس کا شیخ شیطان ہوتا ہے اور وہ ساری محنت برباد کر دیتا ہے. اس لیے صحابہ کرام نے خلافت کو اہمیت دی تھی. فتنہ پیدا ہوتا ہے. جی ٹھیک ہے تو آپ سب نے صحیح بات کہی کہ صحابہ اس بات کو سب سے زیادہ اچھی طرح سے سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر ایک شیطان کو بھی پیدا کیا ہوا. ٹھیک ہے نا جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو ایک دم اسی وقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو بھی پیدا فرما دیا. ٹھیک ہے حالانکہ شیطان کو پیدا تو نہیں کیا تھا, شیطان کو پہلے سے تھا. ٹھیک ہے نا جنوں کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے پہلے پیدا کیا ہوا تھا اور ابلیس جو تھا وہ جنت میں گھومتا رہتا تھا, آسمانوں میں گھومتا رہتا تھا اور اللہ تعالیٰ کی خوب عبادتیں کرتا رہتا تھا, چپے چپے پہ سجدہ کرتا رہتا تھا اور ملائکہ میں بھی اس کو بڑی عزت کا مقام حاصل تھا. طاؤس الملائکہ اس کو کہتے تھے. پھر کیا ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا تو اللہ تعالیٰ نے پورے آسمانوں میں جو ہے نا وہ اعلان فرما دیا کہ اس جو سب کے سب جو ہے نا وہ اس کو سجدہ کرو. لیکن کیا ہوا کہ تمام فرشتوں نے شیطان کو سجدہ کر لیا لیکن اس ابلیس نے شیطان کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا. ٹھیک ہے تو جب اس نے انکار کر دیا اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ کیوں تم نے سجدہ نہیں کیا تو اس نے آگے سے تاویل پیش کری. ایکسپلینیشن کل جو بات ہو رہی تھی خلقتنی من نار و خلقتہ من طین اس وجہ سے میں نے سجدہ نہیں کیا, آپ نے اس کو آگ سے پیدا کیا, آپ نے مجھے جو ہے وہ آگ سے پیدا کیا اور اس کو جو ہے وہ مٹی سے پیدا کیا تو اس وجہ سے میں نے سجدہ نہیں کیا. ٹھیک ہے اگر وہ اس وقت معافی مانگ لیتا نا اللہ تعالیٰ سے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے کہ نا تم سے غلطی ہوگی. ٹھیک ہے غلطی تو ہو جاتی ہے مخلوق سے, خالق سے کبھی غلطی نہیں ہوتی, مخلوق سے تو غلطی ہو سکتی ہے. لیکن اس نے غلطی کو مانا نہیں اور اڑ گیا اپنی غلطی کے اوپر تو وہ اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو جو ہے نا وہ راندہ درگاہ کر دیا اور وہ پھر اسی دن جو ہے وہ عزازیل سے ابلیس بنا دیا گیا. عزازیل اس کا پہلے نام تھا پھر اس کو ابلیس بنا دیا اور ابلیس نے پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے قسمیں کھائیں کہ میں نہیں چھوڑوں گا اس آدم کو اور اس کی اولاد کو, میں ان کو جہنم میں پہنچا کر کے چھوڑوں گا. ٹھیک ہے کہہ رہے عزازیل کا مطلب تو پتہ نہیں, عزازیل اس کا نام تھا اس کا مطلب निजाती पड़ता नहीं पड़ा हुआ। तो उसके बाद से जो है ना वो शैतान हर वक्त मौजूद है दुनिया के अंदर, उसको मौत भी नहीं आती। बिल्कुल आखिर में जाकर के जब सूर फूकी जाएगी ना, तब जिस तरह हम लोग मरेंगे ना उसी तरह वो शैतान भी मर जाएगा, ठीक है ना। उससे पहले शैतान नहीं बना, वो उस वक्त से जिंदा है। तो ये जो हकीकत है कि शैतान हमारा दुश्मन है, वो हर वक्त हमें बर्बाद करने की कोशिश करता रहता है, तो ये हकीकत जो है वो हम तो भूल जाते हैं, हम तो भूल जाते हैं, लेकिन अल्लाह ताला चाहता है कि हम ना भूलें। इस वजह से अल्लाह ताला कुरान मजीद में भी हमें बार बार याद दिलाते रहते हैं, बार बार याद दिलाते रहते हैं, देखो शैतान तुम्हारा दुश्मन है, देखो तो शैतान शैतान ने कर दिया, शैतान ने कर दिया, ठीक है। और अल्लाह ताला जो है वो यानी चाहते हैं कि हम शैतान को हर वक्त याद रखें और उससे जो है ना वो बचने की हर वक्त कोशिश करते रहे, ठीक है भाई, अल्लाह ताला ये बात चाहते हैं। तो सहाबाए कराम ने इस बात को सबसे अच्छी तरीके से समझा इस बात को और माना इस बात को, ठीक है ना। तो उनके तो सरों के ऊपर ना, उनके जहनों के ऊपर हर वक्त शैतान का खौफ कि शैतान हमारे कामों को बर्बाद कर देगा, हमारी मेहनतों को बर्बाद कर देगा और वो खराब कर देगा, वो हर वक्त उनके सर पे सवार रहता था, हर वक्त उनके सर पे सवार रहता था, ठीक है। इसकी मिसाल जो है ना वो आज के दौर के अंदर हम किससे दे सकते हैं कि जिसके सरों के ऊपर हर वक्त दुश्मन सवार रहता है हमारे मुल्क के अंदर या आपके मुल्क के अंदर, ठीक है, जिनके सरों पर हर वक्त दुश्मन सवार रहता है, कौन है वो? आर्मी वाले, ठीक है। आर्मी वाले जो होते हैं ना, मिलिट्री वाले जो होते हैं ना, उनके दिमागों के ऊपर हर वक्त दुश्मन सवार रहता है। क्यों सवार रहता है आर्मी वालों के दिमागों के ऊपर दुश्मन, क्यों सवार रहते हैं?
उन्हें ट्रेनिंग दी
होती है, उनको ट्रेनिंग ऐसी दी हुई होती है, ठीक है, कि हर वक्त दुश्मन को याद रखो, हर वक्त दुश्मन को, ठीक है। और उनका काम क्या होता है आर्मी वाले की, क्यों उनको इतने पैसे देते हैं, क्यों उनको जो है वो इतनी इज्जत देते हैं, क्यों उनको इतने हिफाजत करना उनका काम होता है ना। आर्मी वालों का काम क्या होता है? हिफाजत करना। आर्मी वालों का काम जो है वो खाली मार्च पास्ट चीजें करना नहीं होता, या बंदूकें चलाना नहीं होता, या जो है वो और सिस्टम की खराबात करना नहीं होता। आर्मी वालों का असल काम है डिफेंस करना। तो डिफेंस किससे करेंगे भाई? दोस्तों से डिफेंस करता है कोई इंसान अपना, ठीक है ना। इंसान डिफेंस किससे करता है? दुश्मन से करता है ना, ठीक है। तो वो डिफेंस वाले लोग होते हैं, इसी वजह से जो भी डिफेंस का काम करता है ना वो दुश्मन को कभी भी नहीं भूल सकता। और सहाबा इकराम जो थे ना, ये हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस थे अगेंस्ट हु? अगेंस्ट द शैतान, ठीक है। तो इनको हर वक्त ये बात याद रहती थी, तो इस वजह से इन्होंने जो है ना इस बात को समझा कि भाई शेख, जब अब हमारे शेख दुनिया से रुखसत हो गए, हमारे शेख जो है वो पर्दा फरमा गए हैं, अब जो है ना वो आलम दुनिया से किधर चले गए? आलम बरजख में चले गए हैं, ठीक है ना। अब शैतान जो है ना वो आलम दुनिया के अंदर उसका उसकी रुकावट कोई भी नहीं है, क्योंकि शेख साहब चले गए, ठीक है ना। अब शैतान जो है ना वो क्या करेगा? वो इस सारी की सारी मेहनत जो नबी अलैहिस्सलाम करके गए थे, इस मेहनत को खत्म करने की, खराब करने की कोशिश करेगा। तो सबसे पहले हमें जो काम करना है वो शैतान के रास्ते को रोकने का काम करना है, ठीक है। क्या मतलब शैतान के रास्ते को कैसे रोका जा सकता है? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ये सहाबा कराम को नहीं आता था, नहीं आता था सहाबा कराम को अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना? सहाबा कराम को नहीं आता था पाओ बस, हम तो चाहता, हमारे पास तो शैतान का बस एक ही है ना, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सहाबा को नहीं आता था अऊज़ु बिल्लाह पढ़ना, ठीक है ना। नहीं, सहाबा को पता था अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ठीक है, लेकिन सहाबा को ये बात भी पता थी कि नबी अलैहिस्सलाम ने हमें सिखाया है कि दुआ भी अल्लाह ताला से मांगो। अऊज़ु बिल्लाह क्या है? दुआ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ये दुआ है। दुआ भी मांगो लेकिन उसके बाद दवा भी करो, उसके बाद दवा भी करो, यानी डू समथिंग अबाउट इट। सिर्फ दुआ नहीं, जैसे जब कोई बीमार पड़ जाता है तो हम दुआ करते हैं अल्लाह बीमार को शिफा अता फरमा दे, और फिर उसके बाद अपने कामों में लग जाते हैं, दवा नहीं करते, डॉक्टर के पास नहीं जाते, राइट, उससे दवा लेकर के नहीं आते, दवा खाते नहीं है, बाकायदा स्केड्यूल के मुताबिक सब कुछ करते हैं ना। ये तो नहीं कहते कि नहीं दवा तो कर ली मैंने, बस अब दवा की क्या जरूरत है, ठीक है। तो दोनों काम करना ये सुन्नत है। तो सहाबा कराम को हमसे ज्यादा सुन्नत पता थी, सहाबा कराम ने कहा कि नहीं, हमें सबसे पहले नबी अलैहिस्सलाम का खलीफा चाहिए, हमें सबसे पहले नबी अलैहिस्सलाम का खलीफा चाहिए, यानी आपका नायब जो आपकी जगह पे बैठ सके, आपका वाला काम कर सके, ठीक है। तो इस वजह से क्या हुआ कि अंसार जो था, अब यहाँ पे जो जो दो किस्म के लोग थे, ठीक है ना, एक किस्म के लोग वो थे जो कि नबी अलैहिस्सलाम के घर में मौजूद, ठीक है ना। ये कौन लोग थे, कौन कौन नबी अलैहिस्सलाम के घर में मौजूद था जब आप ससुर का इंतकाल हुआ?
सवाल
अजवाजे मुताहरात घर के अंदर मौजूद थी, और कौन घर में मौजूद था? हजरत अबू बकर सिद्दीक अदान आ गए थे घर के अंदर, वरना वो तो उधर थे, दूर थे ना, सख के मुकाम पर थे, लेकिन वो फौरन पहुंच गए थे। और इसके अलावा घर के अंदर कौन मौजूद था? है? वो तो अजवाज मुताहरात में आ गए ना, बाकी अहले बैत थे। जैसे पिछली क्लास में जो है वो हम आदाब वाली क्लास में अहले बैत के बारे में तफसील से पढ़ रहे थे, हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु मौजूद थे, हजरत अली रज़ियल्लाहु मौजूद थे, हजरत फजल इब्ने अब्बास मौजूद थे, ये अहले बैत थे। ये घर के अंदर सारे नहीं भी हो, घर के बाहर तो मौजूद थे ना, सराउंडिंग यानी बिल्कुल वही पते सारे के सारे, ये अहले बैत थे। और अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु भी वहां पर मौजूद थे, ठीक है। तो इतने में जो है वो क्या हुआ कि हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु घर में, यानी वहां पर आए, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु को बुलाया और उनको फरमाया कि मुझे अभी ये इत्तला मिली है कि जो अंसारी साहब है ना, ठीक है, वो सकीफा बनु सादा, सकीफा बनु सादा एक एक बैठक थी, एक मजलिस थी जो कि हजरत साद बिन उबादा रज़ियल्लाहु के घर का हिस्सा थी, ठीक है। तो साद बिन उबादा रज़ियल्लाहु के घर में जो सकीफा बनु सादा है, वहां पर साहब, वो अंसारी साहब भी जो है ना वहां पे मौजूद है, और वो लोग आपस में बात कर रहे हैं कि नबी अलैहिस्सलाम अब पर्दा फरमा गए हैं, अब जो है ना वो यहाँ अपनी तरफ से समझाने के लिए कह रहे हैं कि अब शैतान को खुली छुट्टी मिल चुकी है, शैतान के रास्ते में कोई रुकावट बाकी नहीं रह गई है, तो अब जल्दी से हमें कोई खलीफा बनाना चाहिए, जल्दी से खलीफा बनाओ वरना जो है ना वो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। तो अब वो सारे के सारे ये बातें कर रहे हैं और फिर वो आपस में डिस्कशन हो रही है कि भाई अंसार में से ही किसी को खलीफा बनना चाहिए, ठीक है। तो उमर अता ने आकर के अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु को बताया कि भाई ऐसी डिस्कशन हो रही है, तो आप आ जाइए, आप सबसे बड़े हैं हमारे, ठीक है ना, सहाबे कराम में सबसे बुजुर्ग आप हैं, सबसे ज्यादा नबी अलैहिस्सलाम के कुर्ब आप ही को मिला था, ठीक है, आप चलिए। तो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ने ये बात सुनी तो उमर फारूक रज़ियल्लाहु की इस बात का उन्होंने भी इनकार नहीं किया, हालांकि बहुत सारी बातें उमर फारूक रज़ियल्लाहु की ऐसी होती थी, उमर अबू बकर सिद्दीक सिद्दीक रज़ियल्लाहु जो है ना वो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु उमर रज़ियल्लाहु की बात नहीं मानते थे, ठीक है ना, कि नहीं उमर ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे। जब हुदैबिया का मौका आया था, है ना, उमर रज़ियल्लाहु जो है वो उनके समझ में नहीं आ रहा था कि क्या क्या हो रहा है, नबी रसूल जो कि क्यों सलाह कर रहे हैं, ठीक है। तो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ने उमर फारूक रज़ियल्लाहु को समझा दिया था कि नहीं उमर तुम क्या गलत बात कर रहे हो, ठीक है ना, तुम तो पता नहीं है तुम किसकी, कौन है ये अल्लाह के नबी है भाई, तो झुक के अगर सुलह कर रहे हैं तो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक कर रहे हैं ना, अपनी मर्जी से क्यों थोड़ी कर रहे हैं झुक के सुलह, ठीक है। और भी बहुत सारे ऐसे मकाम आए हैं देखिए जहां पर अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु को समझा दिया कि नहीं ऐसा ऐसा नहीं, ठीक है। लेकिन इस मौके पर फौरन तैयार हो गए कि हाँ चलो, ठीक है ना, अब ये दोनों हजरात जो है बाहर निकले, तो वहां पर हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रजी अल्लाह, इतने बड़े सहाबी, अशरे मुबशरा में वो भी शामिल थे, और ये वही वाले सहाबी थे जो कि इस्लाम के बारे में इतने ज्यादा संजीदा थे और इतने ज्यादा सिंसियर थे कि ये वही सहाबी हैं जिन्होंने क्या किया था कि इन्होंने एक गजवे के अंदर अपने बाप को कत्ल कर दिया, अपने सगे बाप को, किसी और ने नहीं कत्ल किया, अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु अन्हु वो वाले सहाबी थे जिन्होंने बाप को भी बर्दाश्त नहीं किया, बाकियों ने हाँ अगर मौका होता तो वो भी मार देते, लेकिन किसी और को मौका भी नहीं मिला, उनको मौका मिल, ये भी अवॉइड कर रहे थे, लेकिन फिर बिलाकर उनके बाप ने ना इतना इनको तंग किया इन्होंने, ठीक है। तो अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु अन्हु जो है ना ये उस दर्जे के सहाबी थे, वो रास्ते में मेरे चलो चलो चलो, तो ये तीनों हजरात जो है ना फिर सकीफा बनू सादा के अंदर पहुंचे और वहां पर जो है वो ये डिस्कशन चल रही थी। तो अब उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैं जब वहां पे जा रहा था ना, और ये इतना क्रिटिकल पॉइंट था कि इस वक्त अगर गड़बड़ हो गई और सहाबा के दरमियान इख्तिलाफ हो गया तो फिर तो फसाद पैदा हो जाएगा, ठीक है, और शैतान जो है ना वो फसाद के अंदर उसको सबसे ज्यादा आसानी मिल जाती है कि वो अपना काम कर जाए। तो उमर फारूक ने फरमाते हैं कि मैं रास्ते में जो है ना वो सोचता जा रहा था कि मैं वहां पे जाकर के जो है ना वो कोई बात करूंगा, कोई तकरीर करूंगा, मैं पॉइंट सोच रहा था, ठीक है, जैसे बयान के लिए कोई आता है ना तो रास्ते में पॉइंट सोच रहा था कि मुझे क्या पॉइंट क्या बयान करना है, क्या बयान करना है। अच्छा ये क्यों सोच रहे थे, हमारी तरह होता है कि शेख साहब को तो मैं लेकर के जा रहा हूँ तो शेख साहब कर लेंगे बयान, मुझे क्या पॉइंट सोचने की,
ठीक है ना, ये क्यों रास्ते में सोचे चले जा रहे थे, क्योंकि इनको पता था कि अबू बकर सिद्दीक रहता है ना, ये बोलते नहीं है, ये कम गो है, ये खामोशी पसंद करते हैं, ये ज्यादा नहीं बात करते, तो इनको उम्मीद नहीं थी कि अबू बकर सिद्दीक रहता है जाकर के वहां पे बात करेंगे, ठीक है ना, तो खुद ही बात करने की तैयारी करके जा रहे थे। ठीक है, हमें याद आया कि हम जो है ना, जब बहुत सालों पहले अमेरिका में रहते थे और वहां पे ना अल्लाह ने बस मौका दिया कि प्रिजन में जाकर के जो है ना वो थोड़ा दावत तब्दील का काम करें, ठीक है, तो जेल खाने में। सही, अब वो जेल खाना इतनी बुरी जगह होती थी, ऐसी गंदगी होती थी उधर, और इतना खौफ आता था। खैर बहरहाल वहां पे चले जाते थे, और वो जो हमारे साथ एक अफ्रीकन अमेरिकन, ठीक है ना, तो वो जो है वो जाते थे, वो बहुत बोलने वाला आदमी था, वो बोलता रहता था मैं खामोशी से बैठा रहता था, ठीक है, वो बोलता रहता था खामोशी बैठ रहता था, मैं बस चला जाता था उसके साथ, ठीक है। तो दो तीन दफा इस तरीके से जब हुआ, तो फिर बिलाखिर ना उसने एक दिन कहा कि भाई आज तुम बात करोगे, ठीक है, जब उसने कहा तो अब बात करनी पड़ गई, जब बात करनी पड़ गई तो जब बात करी ना, तो फिर आखिर में वो कहता है कि तुमने बात करी मुझे बड़ी खुशी हुई, मुझे तो लगता था तुम्हें बात करनी नहीं आती है, किस वजह से तुम जब आते हो काम कर बैठे जाते हो, तुम्हें तो बात ही करनी नहीं आती, इसका मतलब है आज तुमने बात करी है तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि हाँ तुम भी बात कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से ना कुछ लोग होते हैं वो बिना वजह बात नहीं कर रहे होते, तो अबू बकर सिद्दीक बता बिल्कुल बिना वजह बात खामोश रहते थे, तो उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु का ख्याल ये था कि मुझे ही बात करनी पड़ जाएगी वहां पे, तो वो सोचते हुए जा रहे थे रास्ते में। तो इतने में जब वहां पे पहुंच गए ना, तो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु, अच्छा वो आगे बढ़ने लगे बात करने, उमर बैठ लो ठीक है मुझे बात करने, ठीक है। क्रिटिकलिटी ऑफ द सिचुएशन देखें, इवन अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु जैसे कम गो आदमी जो है ना, उन्होंने भी इसकी अहमियत को समझा और उन्होंने कहा मैं बात करूंगा, मुझे बात करने, ठीक है। और उन्होंने फिर जो बात करी है ना, वो ऐसी बात करी है कि उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु बाद में फरमाते हैं कि जो कुछ मेरे जहन में था ना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु, उससे कई गुना ज्यादा अच्छी बात करती हूँ, ठीक है। तो इतनी बातें तो मैं भी नहीं कर सकता था अच्छी तरीके से जैसे अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु कर दी। तो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने फिर उसके बाद जो है ना वो एक बाकायदा खुतबा, अब ये देखें हम चूंकि अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु की जिंदगी ही के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इस वजह से ना अब हमें उनके खुतबात को जानना चाहिए, मालूम होना चाहिए कि उन्होंने क्या क्या बातें करी। इसके ऊपर हमारे दोस्तों ने अब्दुल्ला इब्राहिम भाई ने अपनी किताबों में इनायत फरमाई थी, तो इससे हम फिर रेफर करते हैं कि उन्होंने ना अपनी तकरीर शुरू करी और फरमाया कि अल्लाह ताला ने अपनी मखलूक के बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना और अपनी उम्मत का निगरान मुकर्रर करके, ठीक है, नबी अलैहिस्सलाम को उम्मत का निगरान यानी हिफाजत करने वाला मुकर्रर करके इसलिए महबूस फरमाया ताकि सिर्फ अल्लाह ताला की परस्तिश हो, ठीक है। यानी नबी अलैहिस्सलाम क्यों उस दुनिया में आए, शैतान से बचाने के लिए। शैतान क्या करता था कि अल्लाह ताला के सिवा दूसरों को भी परस्तिश करवाता था, नबी अलैहिस्सलाम ने हिफाजत फरमाई आकर के उम्मत की, सिर्फ अल्लाह का हक सिर्फ ये है कि सिर्फ अल्लाह की इबादत की जाए और किसी की इबादत की जाए। तो उसी की वहदानियत को, हालांकि इससे पहले लोग अल्लाह ताला के सिवा मुख्तलिफ माबूदों की इबादत करते थे और दावा करते थे कि ये माबूद अल्लाह के यहाँ उनके सिफारिश करने वाले और नफा पहुंचाने वाले हैं, हालांकि वो तो पत्थर से तराशे और लकड़ी से बनाए जाते थे, ठीक है ना। कल जैसे कि आपने सुना था ना, इल्ला युकर्रिबूना ज़ुल्फा वमा नअबुदुल्लाह इल्ला लियुकर्रिबूना इलल्लाही ज़ुल्फा, ठीक है, कि हम तो अल्लाह ताला की इबादत जो है ना वो नहीं करते, हम तो सिर्फ इसलिए अल्लाह की हम तो बुतों की इबादत नहीं करते, हम तो सिर्फ इसलिए करते हैं कि बुत जो है ना हमें अल्लाह ताला के करीब कर देंगे, ठीक है, हमें अल्लाह ताला से जोड़ देंगे। तो ये अबू बकर सिद्दीक ने एग्जैक्टली ये बात कही कि ये माबूद अल्लाह के यहाँ ना, ये कहते हैं कि ये तो अल्लाह के यहाँ सिफारिश करने वाले और नफा पहुंचाने वाले हैं, हालांकि वो तो पत्थर के हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं वयअबुदून मिन दूनिल्लाही मा ला यज़ुर्रुहुम व ला यन्फ़उहुम व यकूलून हाउलाई शुफ़आउना इंदल्लाह, कि वो अल्लाह ताला के सिवा ऐसों की परस्तिश करते हैं जो ना उनको नफा पहुंचा सकती है ना नुकसान, और वो कहते हैं कि ये माबूद अल्लाह ताला के हमारे सिफारिशी हैं, ठीक है, यानी हम इनकी इबादत इनके लिए नहीं कर रहे हैं, हम तो बस इसलिए कर रहे हैं कि अल्लाह के करीब होना चाहते हैं, ये हमारी सिफारिश कर देंगे अल्लाह ताला के यहाँ, ठीक है, हालांकि ये कैसे सिफारिश करेंगे अल्लाह ताला के यहाँ, ये तो कुछ भी नहीं कर सकते। अच्छा अज़ाज़ील का मतलब उन्होंने भी पूछा था, जवाब दे दिया मुझे नहीं मालूम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये पैगाम, आगे उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये पैगाम अरबों को बहुत बुरा लगा,
कि भाई हम तो इतने बुतों की इबादत करते हैं, ये कहते हैं कि नहीं किसी बुत की इबादत ना करो, और वो अपने आबाई दीन के तर्क आबाई दीन को तर्क करने पर आमादा नहीं हुए। अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक के लिए मुहाजरीन और वलीन को मखसूस फरमाया। अब वक्त सिद्दीक रादान है वो मुहाजरीन के फजाइल बयान कर रहे हैं कि अल्लाह ताला ने नबी अलैहिस्सलाम सलाम की तस्दीक सबसे पहले किससे करवाई, अंसार से नहीं करवाई, ठीक है ना। ये अल्लाह ताला का फैसला था कि नबी अलैहिस्सलाम सलाम का अल्लाह ताला ने कहा भेजा, मक्का मुकर्रमा में भेजा, मदीना मुनव्वरा में नहीं भेजा। तो सबसे पहले तस्दीक किसने करी, मक्का मुकर्रमा वालों ने करी जो कि मुहाजरीन बने बने बाद में, ठीक है। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए, उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हर हाल में रहने के लिए बैत का वादा किया, और बावजूद अपनी कौम की ईजा रसानी और तकजीब के उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया। हालांकि तमाम लोग उनके मुखालिफ थे और उन पर जुल्म करते थे, मगर वो तमाम लोगों के जुल्म और उनकी साजिशों के बावजूद अपनी कम तादाद से कभी मुतासर और खाइफ नहीं बचते। मक्का मुकरमा में एक एक करके लोग मुसलमान हो रहे थे, हो गया मक्का मुकरमा में एक एक करके लोग मुसलमान हो रहे थे, ठीक है ना। सबसे पहले हजरत अबूबकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु मुसलमान हुए, अली रज़ियल्लाहु अन्हु मुसलमान हुए, औरतों में जो है सैयदुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हु मुसलमान हुई। और आपको पता है कि हम बड़ी तफसील के साथ सैयदुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्लास के अंदर पढ़ चुके हैं कि सारे लोग जो है उनके मुखालिफ हो गए, और पहले जो है वो जुबानी अजियतें देते रहे, फिर आखिर जो है वो फिजिकल अजियतें देते रहे, और इतनी बुरी बुरी अजियतें दी हैं हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु को, हजरत हुबैब को, हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु को, और सारे सहाबा किराम को। नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 3 साल तक कहाँ पे शेबे अभी तालिब के अंदर बंद होना पड़ गया, दरख्तों के पत्ते खाते थे। तो ये सब कुर्बानियां किन लोगों ने दी थी, अजियतें फिजिकल अजियतें किन लोगों ने बर्दाश्त करी थी, ये सारे के सारे वो जो के हिजरत करके फिर मदीना मुनव्वरा आए और मुहाजरीन कहता है, ठीक है। और इन लोगों ने ये जो अजियतें बर्दाश्त करी, ये उस वक्त बर्दाश्त करी जबकि दुनिया में कोई दूसरा नहीं था जो कि नबी अलैहिस्सलाम की मदद करता, ठीक है ना। ये अपॉर्चुनिटी किसको मिली, ये फजीलत किसको मिली, ये सिर्फ इन मुहाजरीन को मिली, ठीक है, और अल्लाह की तरफ से मिली, अल्लाह ताला ने दिया उनको। हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ठीक है ना, नबी अलैहिस्सलाम से 15 साल बड़ी थी, यानी एक तरह से वो बुढ़ापे की हदूद पे पहुंच चुकी थी जब नबी अलैहिस्सलाम की उनसे शादी हुई, ठीक है। बुढ़ापे में बस पहुंच 40 ईयर्स, 50 ईयर्स की थी नबी अलैहिस्सलाम की उम्र, कितनी 25 साल, तो उनकी उम्र 40 साल थी, ठीक है ना। तो 40 साल में ना फिजिकल जो आपकी ग्रोथ होती है वो फिर डिप आना शुरू हो जाता है, 40 में बिल्कुल टॉप पे पहुंचते हैं, नबूवत मिलती है 40 में नबी, है ना, फिर उसके बाद डिप शुरू हो जाता है। तो उनकी उम्र ऐसी थी, फिर उनकी 2 शादियां पहले हो चुकी थी, 2 शौहर उनके इंतकाल फरमा चुके थे, ठीक है ना। ये नबी अलैहिस्सलाम सलाम से उनकी 3री शादी, उनकी औलादें भी मौजूद थी, नबी अलैहिस्सलाम सलाम से उनसे शादी ने उनसे शादी फरमा ली, ठीक है। तो नबी अलैहिस्सलाम सलाम उनसे बहुत मोहब्बत करते, बहुत मोहब्बत करते, हत्ता कि उनका जो है वो इंतकाल हो गया, ठीक है, बुढ़ापे में पहुंच गए, 60 ईयर से ज्यादा उनकी उम्र हो गई, उनका इंतकाल हो गया। उसके बाद फिर नबी अलैहिस्सलाम की शादी किनसे हुई, हजरत सौदा रज़ियल्लाहु अन्हा से हुई और हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा से, ठीक है। जब खदीजतुल कुबरा का इंतकाल हो गया उस वक्त तक उनकी जिंदगी में किसी से आपसे उन्होंने शादी नहीं करी, ठीक है। तो आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा से फिर नबी अलैहिस्सलाम को बड़ी मोहब्बत थी। तो एक दफा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती है कि मैंने नबी अलैहिस्सलाम से पूछा कि आपको खदीजा से जो मोहब्बत है ना वो किसी से नहीं है, तो खदीजा तो बूढ़ी थी और वो तो यानी बच्चों वाली भी थी और उनके इतने पहले भी 2 शादियां हो चुकी थी, तो आपको खदीजा में इतनी मोहब्बत है, ठीक है ना। बाकी अल्लाह ताला ने अब आपको जवान बीवियां दी हैं और मैं जो हूँ मैं तो बिल्कुल यानी मेरी तो कभी शादी भी नहीं हुई, तो उनसे ज्यादा मुझसे मोहब्बत होनी चाहिए। नबी अलैहिस्सलाम क्या जवाब दिया था, नबी अलैहिस्सलाम ने एग्जैक्टली यही जवाब दिया जो कि मुहाजरीन के लिए अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया कि खदीजा ने मेरी मदद उस वक्त करी जब कोई दूसरा मेरी मदद के लिए तैयार नहीं था, पूरी दुनिया में कोई मेरा मददगार नहीं था, उस वक्त सिर्फ खदीजा मेरी मददगार है ना। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु भी दूसरे सहाबी हैं, या मर्दों में कहा जाए तो सहाबी तो फिर मर्द को ही कहते हैं ना, तो पहले सहाबी हैं, लेकिन पहले मोमिन कौन है, हजरत सैयदुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हु, ठीक है ना। तो ये मर्तबा, ये मकाम तो सिर्फ मकाम करवाओं को मिला, तो उन्होंने यही फरमाया कि इस तरह वो पहले लोग हैं जिन्होंने इस जमीन में अल्लाह ताला की इबादत की और अल्लाह ताला उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वली और खानदान वाले हैं। ठीक है, यानी आप के मददगार, वली का मतलब एक्चुअली क्या होता है, मदद करने वाला, ठीक है ना। और खानदान वाले कैसे, सारे के सारे तो अहले बैत नहीं थे इनमें से, किस तरह भी खानदान वाले बनते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, कुरैश भी तो एक लार्जर फैमिली थी ना, एक लार्जर ट्राइब था ना, तो वो भी तो खानदान ही होता है, बड़ा खानदान होता है। तो मक्का मुकर्रमा के अंदर तकरीबन सारे जो है वो कुरैश के लोग थे। ठीक है, तो फरमाते हैं कि उनके बाद इस मनसब अमारत के सबसे मुकाबले, सबके मुकाबले में वही ज्यादा मुस्तहिक हैं, और मैं समझता हूँ कि उनके इस हक में सिवाय जालिम के और कोई उनसे झगड़ा नहीं करे। ठीक है, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खलीफा बनने का जो हक पहुंचता है ना, वो सिर्फ मुहाजरीन में से किसी को पहुंचता है।
वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी में एक बार कहा था कि खिलाफत का जो मुहाजिर के लिए,
इमामत कुरैश के लिए होगी, इमामत कुरैश में, ठीक है ना। लेकिन देखें एक बात याद रखें, पिछले दिनों अंकल तुम भी बात हो रही थी कि नबी अलैहिस्सलाम ने जो बातें फरमाई ना अपनी जिंदगी में, ठीक है ना, उस जमाने में व्हाट्सएप नहीं होता था, ठीक है, व्हाट्सएप नहीं होता उस जमाने में। तो अब जिस तरह से है ना कि माशाल्लाह हमारे जितने स्टूडेंट्स हैं वो सारे के सारे व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा है, तो अब अगर जो भी बात करनी है तो हमने लिखा व्हाट्सएप के ऊपर या वॉइस रिकॉर्ड करवाया, ठक करके सेंड किया और सारे लोगों तक जो है वो मैसेज पहुंच गया। ठीक है, तो आज व्हाट्सएप के जरिए से जो है वो सारे लोगों को एक मैसेज एक साथ पहुंच जाता है। उस जमाने में व्हाट्सएप नहीं होता था, उस जमाने में इंटरनेट नहीं होता था, ठीक है ना। तो उस जमाने में जो है ना वो अखबार में ही होते थे, ये भी नहीं होता था कि अखबार में प्रिंट करवा दिया और अखबार सबके घरों में पहुंच गया, ठीक है ना। तो नबी अलैहिस्सलाम जब कोई बात फरमाते थे ना, तो ऐसा नहीं होता था कि हर सहाबी को वो बात पता होती थी, हर सहाबी को हर बात पता होती थी, नहीं ऐसा नहीं होता था। ठीक है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मजलिस में बैठे हुए हैं, वहां पे चार पांच दस पंद्रह बीस कितने भी सहाबी, उन्होंने वो बात सुन ली, ठीक है ना। अब उन्होंने आगे चंद लोगों को बता दी, लेकिन हर बंदा जो मुसलमान होता, हर बंदे तक नबी अलैहिस्सलाम सलाम की हर बात पहुंच रही है, ऐसा नहीं होता, ठीक है ना, सिवाय चंद बातों के, सिवाय चंद बातों के जो कि हर बंदे तक पहुंचती थी। और कोई बात हर बंदे तक, वो कौन सी बातें होती हैं जो हर बंदे तक पहुंचती, जो जरूरियात दीन, माशाल्लाह बड़ा जबरदस्त जवाब दिया, बिल्कुल सही, ठीक है। तो जरूरियात दीन में एक दो का नाम अगर आप बता दें, फराइज, ठीक है ना, और फराइज के अलावा एक और बात है, और अबाउट कुरान, कुरान भी तो बात थी ना, नबी अलैहिस्सलाम की जुबान मुबारक से कुरान मजीद की आयात निकलती थी ना, ठीक है ना। तो कुरान मजीद की जो आयात थी ना, वो तकरीबन, वो भी हर नहीं कह सकते, लेकिन तकरीबन सारे सहाबा तक पहुंचे, भाई ये कुरान मजीद की आयत नाजिल हो गई है, अब एक सहाबी ने दूसरे को बताई, दूसरे ने दूसरे को बताई, सब एकदम जैसे कहते हैं ना जंगल की आग की तरह फैल गई, सबको पता चला यहाँ पे ये कुरान मजीद की आयत नाजिल हो गई, ठीक है ना। और उसी तरह चंद और अहादीस मुबारक नबी अलैहिस्सलाम सलाम के और अकवाल या आप सलाम के और अफआल, जैसे नमाज पढ़ना है ना, ये फराइज में से है। कोई मुसलमान ऐसा नहीं है कि जो मुसलमान तो हो गया लेकिन उसको नमाज का पता ही नहीं, नमाज कैसे पढ़ते हैं, नमाज पढ़नी थी, नहीं हर मुसलमान को तो कैसे पहुंची, बातों से पहुंची ना, ठीक है ना। तो बिल्कुल आपने सही जवाब दिया, माशाल्लाह खुशी हुई कि आप लोग बहुत अच्छी तरीके से बातों को समझ रहे हैं कि फराइज वाली जो बातें थी वो हर एक तक पहुंचती थी, लेकिन उसके अलावा नहीं, ठीक है ना। तो जैसे ये है कि भाई इमामत जो है वो कुरैश में से होगी, तो आप ये हर बात नहीं, हर बंदे ने ये बात नहीं सुनी, ठीक है ना। उसी तरीके से और भी बहुत सारी बातें आगे आएंगी जो कि हर एक ने नहीं सुनी हुई थी। तो नबी अलैहिस्सलाम सलाम के बारे में फिर उन्होंने क्या फरमाया कि अच्छा साहब के कोई और झगड़ा नहीं करे, अब रहे तुम लोग, ठीक है ना। ये तो हमने बात कर दी, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने मुहाजिरीन के बारे में बात कर दी, अब अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु आए अंसार के बारे में, तो फरमाते हैं कि अब रहे तुम लोग यानी अंसार, तो कोई शख्स दीन में तुम्हारी फजीलत और इब्तदाई शिरकत और खिदमत का इनकार नहीं कर सकता, ठीक है ना। यू आर इन डीड, यू हैव अ पोजिशन, ठीक है ना, जिसका कि कोई शख्स इनकार नहीं कर सकता। अल्लाह ताला ने अपने दीन और अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिमायत के लिए तुम्हें पसंद किया, लेकिन कब, जब 13 साल गुजर चुके, बल्कि 12 साल गुजर चुके थे, तब अंसार के लोग आए और उन्होंने बैत करी, फिर उसके बाद और लोग आए उन्होंने बैत करी, और फिर जो नबी अलैहिस्सलाम थे एक बार आए, तब अंसार ने फिर नबी अलैहिस्सलाम की मदद करनी शुरू करी। ठीक है, और इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे पास हिजरत करके आए, उस वक्त भी उनकी अजवा इस वक्त भी उनकी अजवाज और असहाब तुम्हारे यहाँ ही रहते हैं। यानी ऐसा नहीं हुआ कि जब मक्का मुकरमा फतह हो गया तो नबी अलैहिस्सलाम ने कहा अब मैं अपने शहर में वापस चला जाऊंगा और मेरे जितने साथी हैं वो सारे के सारे हमारे अपने पुराने शहर में। नहीं, हम मक्का मुकरमा फतह होने के बाद भी तुम्हारे ही पास वापस आए, है ना? वो सारा हमने वाकया पढ़ा था जिसमें कि सब रोना शुरू हो गए थे जब ये बात हुई थी कि नबी अलैहिस्सलाम तो हमारे साथ नहीं आ रहे और उनको जो है वो बड़ी बड़ी तोहफे दे रहे हैं मक्का वालों को। नबी अलैहिस्सलाम क्या प्यारा खुतबा फरमाया, सब रोना शुरू हो गया था उस वक्त। ठीक है, तो बेशक मुहाजरीन के बाद तुम्हारे मुकाबले में हमारी नजर में किसी और की कदर और मंजिलत नहीं है, लिहाजा मुनासिब होगा कि अमीर हम हो, ठीक है, और वजीर तुम। ठीक है, वजीर कौन होता है? जो कि सपोर्टर होता है। और अंसार, लफ्ज अंसार वो भी अल्लाह ताला ने पसंद फरमाया लोगों के लिए, और नबी अलैहिस्सलाम ने वही लफ्ज इस्तेमाल किया। अंसार का मतलब क्या होता है? नुसरत करने वाला, मदद करने वाला। ठीक है, तो इस्लाम की मदद करने वाले तुम लोग भी होगे, और ये जो है ना वो वजीर वाली पोजीशन होती है। तो अमीर मतलब जो बिल्कुल लीडर होता है ना वो फिर अंसार अमीर यानी मुहाजरीन में से होगा, और तुम वजीर होगे। हर मामले में तुमसे मशवरा किया जाएगा और बगैर तुम्हारी इत्तेफाक राय के हम कोई काम नहीं करेंगे। ठीक है, तो जब सिद्दीक अदान की तकरीर खत्म हुई तो हजरत अबू अबैदा रज़ियल्लाहु जो कि इन तीन में से एक थे ना, तो उन्होंने लोगों से कहा कि ए गुरु अंसार, तुम वो लोग हो जिन्होंने सबसे पहले इस दीन की हिमायत करी थी, अब ऐसा ना करना कि तुम्हारी ही वजह से इस दीन के अंदर बिगाड़ पैदा हो जाए, इख्तलाफ पैदा हो जाए और शैतान को मौका मिल जाए। ठीक है, तो हजरत बशीर बिन साद अंसारी हजरत आना, देखिए कितना इंपॉर्टेंट होता है कि जो दूसरी साइड है ना वहां से भी कोई बंदा उठ के बात करे। तो अल्लाह ताला ने ना बशीर बिन साद अंसारी रहता अंसारी साहबी थे, उनके दिल में बात डाली, वो फौरन खड़े हो गए। ठीक है, और उन्होंने भी वही अल्फाज कहे जो कि अबू उबैदा बिन जर्रा कि अंसार तुम लोगों ने इस दीन की सबसे ज्यादा नुसरत फरमाई है, अब कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही जो है ना वो इसके अंदर बिगाड़ डालने का सबब बन जाओ। तो अबू बकर सिद्दीक जो है वो बोल उठे उसके बाद कि देखो ये उमर है और ये अबू उबैदा बिन जर्रा है, लोगों तुम इनमें से किसी को अपना खलीफा, उमर को या अबू उबैदा को, इन दोनों में से किसी को अपना खलीफा बना लो। तो उस मौके पर फिर उमर रज़ियल्लाहु अन्हु है ना वो फौरन बोले आपके होते हुए हरगिज हम इस मनसब को कबूल नहीं करें। ठीक है ना, क्योंकि आप मुहाजरीन में सबसे बुजुर्ग हैं, सबसे सीनियर आप ही हैं, आपको ही अल्लाह ताला ने नबी अलैहिस्सलाम की मईयत गार के लिए कबूल फरमाया है ना। गार में जो 3 रातें नबी अलैहिस्सलाम के साथ और 3 दिन किसने? अबू बकर सिद्दीक। ठीक है ना, उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाया करते थे कि ए अबू बकर, आप मेरी सारी जिंदगी की इबादतें ले लें और मुझे गार की ना एक रात वाली इबादत दे दे, मैं समझूंगा मैं आई बेटर हूँ। ठीक है ना, क्योंकि उसका जो सवाब मिला है ना आपको मेरी सारी जिंदगी की इबादतों से ज्यादा है। ठीक है, तो उन्होंने यही फरमाया कि गार में भी नबी अलैहिस्सलाम के रफीक आप ही रहे और नमाज की इमामत में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानशीन आप बन चुके हैं। 13 या 13 से भी ज्यादा नमाजों की इमामत नबी अलैहिस्सलाम की मौजूदगी में दुनिया में और नमाज हमारे दीन का सबसे बड़ा रुकन है, इसलिए आपके होते हुए ये बात किसी को जेब नहीं देती कि वो अमीर बने यानी नबी का खलीफा बने। अमीर बनने का मतलब ही नहीं कि आप जाए वो अमीर हो जाए वेल्दी वेल्दी, क्योंकि पैसे वैसे नहीं मिलते दो जमाने में, खलीफा बने नबी। ठीक है, तो आप अपना हाथ बढ़ाइए। ठीक है, तो अब जो ही हजरत उमर फारूक और अबू उबैदा बैत के लिए आगे बढ़े ना, तो उनसे भी पहले बशीर बिन साद अंसारी उन्होंने अबू बकर सिद्दीक से बैत कर ली। ठीक है ना, अब जब उन्होंने बैत कर ली तो सारे अंसार भी खड़े हो गए और ये लोग तो पहले ही खड़े हुए थे उमर और हजरत अबू उबैदा बिन जर्रा, और इन्होंने आकर के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, सॉरी अबू बकर सिद्दीक से बैत करी। ये कौन लोग थे? ये वो लोग थे जो कि सकीफा बनू साइदा के अंदर वहां पर मौजूद थे, सारे वहां पे मौजूद नहीं थे। ठीक ठीक है ना, जो लोग भी मौजूद थे उन सब ने वहां पे बैत कर ली, और उनमें हजरत साद बिन उबादा रज़ियल्लाहु अन्हु भी मौजूद थे। साद बिन उबादा का जो है ना, वो असल में इनके आने से पहले अंसार से बात कर रहे थे, और वो यही कह रहे थे कि भाई अंसार जो है वो नबी अलैहिस्सलाम ने तुम्हें अपना इतना करीबी फरमाया, और तुमने मुहाजिरीन की मदद करी, इस्लाम के दुश्मनों के साथ तुमने जिहाद किया। अब जब अल्लाह के रसूल चले गए ना, तो अब जो है ना वो खिलाफत तुम्हारा हक है, तो तुम जो है वो अपना कोई खलीफा बना लो। ये साद बिन उबादा रहता ना, इससे पहले डिस्कशन कर रहे थे, क्योंकि अंसार के यही एक अमीर रह गए थे। अंसार के दूसरे बड़े अमीर कौन थे? साद बिन अभी वकास तो मुहाजिरीन में से थे, साद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु, मुआज़ भाई खुश हो गया, ठीक है। तो साद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु जो थे ना, वो दूसरे अमीर थे, औस फज़रज में से एक के जो साद बिन मुआज़ थे, एक के जो साद बिन उबादा थे। इनका इंतकाल कब हो गया था किसी को याद? साद बिन मुआज़ ग़ज़वा खंदक में इनको एक तीर आकर के लगा था, और उस तीर की वजह से जो है ना वो इनको जिनका इंतकाल हो गया था। लेकिन इससे पहले पहले वो जो बनू कुरैज़ा वाले यहूदी थे, उनकी इसका इन्होंने फैसला फरमा लिया था, ठीक है, तो फिर उनका इंतकाल हो गया था। तो इस वजह से ना दो साथ थे, दो में से एक ही रह गए थे, साथ में वालद आनंद ही थे। तो लोग जो है ना फिर उन्हीं के लिए फिर थे कि भाई आप ही को हम अमीर बना लेते हैं। लेकिन जब अबूबकर सिद्दीक के बारे में फैसला हो गया, तो साथ में उबादा रज़ियल्लाहु अन्हु ने भी आगे बढ़ करके इनसे बैत कर ली, ठीक है। कुछ दुश्मनाने इस्लाम जो के उल्टी सीधी झूठी खबरें फैलाते रहते हैं, तो उन्होंने कई किताबों में लिख दिया कि साथ में उबादा ने बैत नहीं करी, माना कि जो झूठ है उन झूठों में से एक झूठ है जो के लोग फैलाते रहते हैं। अच्छा, कुछ किताबों में ये भी झूठ लिखा हुआ है कि अली रज़ा ने भी बैत नहीं करी थी, माना कि अली रज़ा ने भी बैत कर ली थी। कुछ किताबों में ये भी लिखा है कि जुबैर बिन अवाम रज़ा ने बैत करी थी, लेकिन ऐसा भी सही नहीं है, जुबैर बिन अवाम रज़ा ने भी बैत कर ली थी। थोड़ा सा आगे पीछे हुई थी, क्योंकि सारे लोग वहां पर मौजूद, अभी तो तीन मुहाजरीन आए थे ना। नबी अलैहिस्सलाम कहाँ पर मौजूद है? अपने हुजरे के अंदर, वहां पे आप की बॉडी मौजूद है, और वहां पर अजवाज मुतहरा और जो घर के करीबी लोग हैं जिनमें अली रज़ा नहीं मौजूद, अली रज़ा घर के लोगों से, तो वो तो वहां पर मौजूद थे। यहाँ पे कौन आए थे? यहाँ पे तो खाली तीन मुहाजरीन आए थे, ठीक है। तो इस वक्त इन्होंने बैत करी ना, बाकी लोगों ने कब बैत करी? जब अगले दिन मस्जिद नबवी में फिर आम बैत का इंतजाम किया गया, ठीक है ना। ये खसूसी बैत थी जो कि वहां पे मौजूद लोगों ने करी, फिर आम बैत का इंतजाम मस्जिद नबवी के अंदर गालबन दूसरे दिन में किया गया। सब मुसलमान वहां पे जमा हुए, और उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने मिंबर पर बैठ करके एक खुतबा दिया अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में, और फिर अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु जो है वो मिंबर पर आए, और फिर सब लोगों ने अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के हाथ पर बैत करी, ठीक है। तो ये सारा मामला जो है फिर सकीफा बनू साइदा के अंदर ये हो गया, और उसके बाद जो है वो ये लोग वापस आ गए घर में। अच्छा, हमारे उलमा ने जैसे जिनकी किताब याद ज्यादा इस्तेमाल करता है हजरत इदरीस कांदलवी रहमतुल्लाह, उन्होंने ना और भी बातें लिखी हैं कि अबू बकर सिद्दीक जो है वो नबी अलैहिस्सलाम की तकफीन और तजहीज और तकफीन जो होती है, तो उसको छोड़ करके वहां पे जो चले गए थे ना, उसकी ये भी वजह थी कि भाई तजहीज और तकफीन का जो इमीडिएट काम होता है ना, ये तो अहले बैत करते हैं ना, घर वाले लोग करते हैं, ठीक है ना। तो घर वाले लोग तो वहां पे मौजूद थे, सही है। और दूसरी बात ये भी लिखी है कि इनको ये बात अच्छी तरीके से पता थी कि जो अंबिया के बदन होते हैं, अंबिया की जो बॉडीज होती हैं, ये बिल्कुल भी इनके अंदर चेंज नहीं आता, ठीक है, ये खराब नहीं होती मरने के बाद। जैसे इनके अंदर से रूह निकल जाती है, तो अब बॉडी जो है वो थोड़ी बहुत गलनी सड़नी वगैरह शुरू हो जाती है ना, अंबिया की बॉडीज के साथ हरगिज ऐसा नहीं होता। बाकी लोगों का कन्फर्म नहीं होता, किसी की बॉडी को अल्लाह ताला ने महफूज कर दिया, किसी की बॉडी को अल्लाह ताला ने महफूज नहीं किया। अंबिया के बारे में कोई डाउट ही नहीं कि उनकी बॉडी का कोई मसला ही कोई नहीं, तो इस वजह से ना ये भी कोई मसला नहीं था कि अगर नबी अलैहिस्सलाम की बॉडी पड़ी हुई है तो उसके अंदर नाउज बिल्ला कोई बदबू तआफुन वगैरह आना शुरू हो जाए, कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी इस किस्म की। तो बड़े इत्मीनान के साथ इन दो वजूहात से, ये इत्मीनान के साथ जो है वहां पे चले गए थे, और वहां पे सारे मामला जो है ना वो निपटा करके फिर वापस तशरीफ लाए, ठीक है। और जब वापस तशरीफ ले आए, तो फिर जो है ना ये तजहीद और तकफीन की तरफ लोग जो है वो मुतवज्जे हुए, और इसकी तफसील इंशाअल्लाह फिर हम अगली क्लास के अंदर पढ़ने के ऑनलाइन वाला दीजिए। तीसरी तरह की शुरू होती है।